नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष उद्बोधन पर बात कर रहे हैं
जी।
ये पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का दिया हुआ है और शीर्षक है साधना, समर्पण एवं वातावरण।
ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
हाँ बिल्कुल, तो आज का जो हमारा मकसद है वो पूज्य गुरुदेव के विचारों को थोड़ा गहराई से समझना है। मतलब कैसे ये तीनों चीजें साधना, समर्पण और वातावरण मिलकर आध्यात्मिक और यहाँ तक कि सांसारिक उन्नति का भी रास्ता खोलती हैं।
सही कहा,
तो चलिए इस पर बात करते हैं।
बिल्कुल। और इस उद्बोधन की खास बात ये है ना कि ये बाहरी सहायता जिसे हम अनुदान कह सकते हैं और अंदरूनी कोशिश मतलब हमारा अपना पुरुषार्थ, इसके बीच एक संतुलन की बात करता है।
अच्छा,
पूज्य गुरुदेव ने इसे बड़ी ही सरल उदाहरण से समझाया है। जैसे खाना कोई पकाकर दे सकता है, बिल्कुल दे सकता
हाँ,
है,
वो तो है,
पर उसको चबाना और पचाना
वो तो है।
वो तो खुद ही करना पड़ेगा, वो काम कोई और नहीं कर सकता हमारे लिए।
बिल्कुल सही। तो पूज्य गुरुदेव ने यह भी कहा है कि उन्होंने शांति कुंज में एक खास तरह का एक विशेष वातावरण तैयार किया है।
जी,
तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई इस वातावरण का अगर लाभ उठाना है तो व्यक्ति की अपनी क्या भूमिका है और ये वातावरण इतना जरूरी क्यों है?
हाँ, यहीं पर वातावरण यानी माहौल की जो शक्ति है वो सामने आती है। पूज्य गुरुदेव इसे कई उदाहरणों से समझाते हैं।
जैसे
जैसे गुरु वशिष्ठ जी का उदाहरण दिया है। उन्होंने श्री राम और उनके भाइयों को आध्यात्मिक शिक्षा देनी थी, योग वशिष्ठ सिखाना था।
हाँ,
तो वो उन्हें अयोध्या के मतलब वो राजसी माहौल से दूर हिमालय के एकांत शांत वातावरण में ले गए। अयोध्या में वो बात नहीं बन सकती थी।
अच्छा, यानी तप के लिए, साधना के लिए वैसा माहौल चाहिए था।
बिल्कुल, तपस्वी वातावरण जरूरी था उसके लिए।
हाँ, ये तो हुई आध्यात्मिक बात, लेकिन क्या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी, सांसारिक जीवन में भी वातावरण का इतना ही असर होता है?
हाँ, निश्चित रूप से। और पूज्य गुरुदेव ने इसके भी उदाहरण दिए हैं। जैसे मैसूर का चंदन है,
हाँ, उसकी खुशबू,
हाँ उसकी जो खास खुशबू है, या फिर नागपुर के संतरे हैं, उनकी जो मिठास है,
जी
वो कहाँ से आती है? वो उस जगह की मिट्टी, पानी, हवा, मतलब वहां के वातावरण की ही देन है। उस चंदन के पेड़ को आप कहीं और लगा दीजिए, वो वैसी खुशबू नहीं देगा।
सही बात है।
और एक श्रवण कुमार का उदाहरण भी दिया है जो बड़ा मार्मिक है। कैसे एक खास जगह के, शायद वहां के बुरे संस्कारों के असर में आकर क्षण भर के लिए ही सही, उनके मन में भी अपने माता पिता के लिए थोड़ा गलत भाव आ गया था।
यानी वातावरण का असर इतना गहरा हो सकता है?
बिल्कुल, क्षण भर के लिए ही सही, पर हुआ।
तो फिर शांति कुंज के वातावरण में ऐसी क्या खास बात है? पूज्य गुरुदेव क्यों उस पर इतना जोर देते हैं?
देखिए, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है। हिमालय का प्रवेश द्वार है, मां गंगा का तट है,
जी
सप्त ऋषियों की तपस्थली रही है वो भूमि, स्वयं विश्वामित्र जी ने वहां साधना की।
हाँ,
और फिर उसके ऊपर वहां जो निरंतर जप, यज्ञ और स्वयं पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की जो गहन तपस्या हुई है,
हाँ, उनका अपना तप,
हाँ, उससे वहां एक बहुत ही, क्या कहें, प्राणवान आध्यात्मिक माहौल बन गया है। एक शक्तिशाली वातावरण तैयार हुआ है।
समझ गया। तो वातावरण एक तरह से उपजाऊ जमीन की तरह है।
बिल्कुल।
लेकिन क्या सिर्फ अच्छी जगह चले जाने से, मतलब शांति कुंज पहुंचाने भर से सब हो जाएगा? या फिर समर्पण या जो श्रद्धा की बात है उसका क्या रोल है?
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और पूज्य गुरुदेव इस पर बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं कि भाई माहौल कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो उसका पूरा लाभ नहीं ले सकता।
अच्छा,
बिना श्रद्धा के तो गंगा नदी भी बस पानी का बहाव है और शांति कुंज जैसी पावन जगह भी सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें रह जाएंगी।
तो ये श्रद्धा की शक्ति कैसे काम करती है, क्या इसके भी कुछ उदाहरण दिए हैं गुरुदेव ने?
हाँ, कई उदाहरण हैं, बहुत प्रेरक हैं। जैसे मीरा का उदाहरण लें।
हाँ, मीरा बाई,
उन्होंने तो पत्थर की एक मूर्ति में ही अपने गिरधर गोपाल को देख लिया है ना, और उनकी श्रद्धा इतनी सच्ची, इतनी जीवंत थी कि वो जहर का प्याला भी अमृत समझकर पी गईं।
बिल्कुल।
या फिर एकलव्य को देखिए, गुरु द्रोणाचार्य ने तो मना कर दिया था सिखाने से,
हाँ,
पर उसने मिट्टी की मूर्ति बनाई, उसी को गुरु माना और ऐसी श्रद्धा रखी कि उससे वो धनुर्विद्या सीख ली जो शायद अर्जुन को भी नहीं आती थी उतनी।
कमाल है।
और रामकृष्ण परमहंस जी, उन्होंने तो अपनी अटूट श्रद्धा से पत्थर की काली माँ की मूर्ति को बिल्कुल साक्षात कर दिया था, जीवंत कर दिया था।
तो मतलब सार ये निकल रहा है कि बाहरी माहौल जो वातावरण है और अंदर की जो अपनी श्रद्धा है, लगन है।
हाँ, निष्ठा।
निष्ठा, समर्पण, ये दोनों ही पहिए जरूरी हैं, एक के बिना गाड़ी नहीं चलेगी।
एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही पूज्य गुरुदेव का संदेश है कि एक तरफ सहायक वातावरण हो जैसे शांति कुंज और दूसरी तरफ व्यक्ति की अपनी सच्ची जीवंत श्रद्धा हो, ये दोनों मिलेंगे तभी साधना सफल होगी। गुरुदेव कहते भी हैं कि देखो हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, एक अनुकूल माहौल बना दिया, अब साधक को अपने हिस्से का काम करना है, यानी अपने अंदर वो श्रद्धा जगानी है, वो समर्पण लाना है।
बिल्कुल, तो ये जो पूरी चर्चा है ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है।
हाँ बिल्कुल,
और सोचने वाली बात यह है कि हम आज जिस भी माहौल में हैं, हो सकता है वो शांति कुंज जैसा आदर्श ना हो, पर जहाँ भी हैं,
हाँ, अपने अपने परिवेश में,
अपने परिवेश में रहते हुए हम अपने अंदर वो सच्ची श्रद्धा, वो लगन कैसे जगाएं, कैसे उसे मजबूत करें, ताकि हम अपने हिस्से का काम, मतलब अपनी साधना या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का जो हमारा कर्तव्य है उसे पूरा कर सके।
बहुत गहरा विचार है, और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं।
जी, ओम शांति है।